તારીખ 22/11/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 65 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 40C
દર્શન પ્રશ્ન 65 પેજ 59 પુદ્ગલ કા પરિણમન પ્રતિપલ સ્વયં હી હો રહા હૈ ફિર ભી જ્ઞાન મે યહ બાત ક્યો નહીં આતી પ્રત્યેક પરમાણુ પુદ્ગલ પરમાણુ પ્રતિપલ સ્વયં હી પરિણમન રહ્યા હૈ અપની શક્તિ સે परिणाम शक्ति है, जीव में भी है, पुद्गल में भी है और धर्मास्ति अधर्मास्ति कारण आकाश छोड़ द्रव्य में परिणाम शक्ति सामान्य है। शक्ति के कारण से, अपनी शक्ति के कारण से वो परिणमता है। किसी को परिणमाने से परिणमता है ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। संसार में भ्रांति है कि कुछ किए बिना होता नहीं, इसलिए यहां से वो बात चली है कि ईश्वर ने भी जगत बनाया और ईश्वर जो चाहता है वो करता है, वो नहीं चाहता है वो नहीं हो पाता। और हम भी कुछ करें तो होता है, नहीं करें तो नहीं होता है। ये भ्रांति अनादि से है, कोई नई चीज नहीं है। वो भ्रांति संसारी जीवों को अनादि से है ही। वास्तव में वस्तु स्वरूप बिल्कुल इससे विरुद्ध है। और एक जैन दर्शन में ही ये वस्तु की स्वतंत्रता, उसकी टिकने की रहने की स्वतंत्रता और परिणमन करने की भी स्वतंत्रता, दोनों बात स्वतंत्र रूप से हैं, ये बात जैन दर्शन करता है। और कोई संप्रदाय में वो बात नहीं है। बाकी के संप्रदाय में ईश्वर कर्तृत्ववाद व्यापक है, हिंदू धर्म में तो है ही, मुसलमान में भी है और क्रिश्चियन आदि सभी धर्मों में है। ये जो भी ईश्वर करता है वही होता है। कुछ बात उन्होंने अपने हाथ में रखी है, जैसे जन्म मृत्यु वगैरह, बाकी मनुष्य लोग कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई वैज्ञानिक परिस्थिति उसमें कहीं भी नहीं है। ये ईश्वर कर्तृत्व है, ये केवल अंधश्रद्धा का विषय है। क्या है? केवल अंधश्रद्धा का विषय है। न किसी ने ईश्वर को देखा है, न कुछ करता हुआ भी देखा है, जबकि कथाएं, दंत कथाएं बहुत सी है, लेकिन वो दंत कथाएं रही है, इसका अनुभव किसी को होता नहीं है। ज्ञान में क्यों नहीं आता वो बात कि अनादि काल से भ्रम हो रहा है। समाधान क्या दिया है? अनादि काल से जीव को भ्रम हो रहा है कि मैं कुछ करता हूं तो होता है, नहीं करता हूं तो नहीं होता है। लेकिन करना चाहता है तो भी नहीं होता है, वहां वो अपनी श्रद्धा को चेक नहीं करता। कैसा क्यों? जैसे कोई बीमार पड़ना नहीं चाहता है कोई बीमार पड़े, लेकिन खुद डॉक्टर भी बीमार पड़ता है। वैद्य डॉक्टर प्रिवेंटिव मेडिसिन लेते हैं, रोग हो गई नहीं, फिर भी उनको भी रोग हुए बिना नहीं रहता। जब शरीर ही शरीर, क्या शरीर का एक बाल भी जीव के इच्छा के अधीन नहीं है, तो फिर पूरा शरीर का तो सवाल नहीं रहता। फिर भी कर्तृत्व इतना, भ्रांति इतनी बलवान है कि उसको ओवरटेक करके, आंख बीच करके इस विषय में अंधश्रद्धा से चलते हैं लोग। और इस अंधश्रद्धा है वो विपरीत श्रद्धा है, भ्रांति है सो विपरीत ज्ञान है, और उसी के अनुसार वर्तन होता है, आचरण होता है, वो विपरीत होता है, और जिसका फल, जिसका नतीजा दुख आता है, दुख होता है। संसार में सभी जीव दुखी है, इसका यही कारण है। अनादिकाल से भ्रम हो रहा है, इसलिए ये सब पुद्गल का परिणमन स्वयं ही हो रहा है, वो ज्ञान में कैसे आवे? भ्रांति के कारण से वो ज्ञान में नहीं आता। जैसे आंख पे उंगली दबाते ही दो चंद्र दिखता है, कितना दिखता है, और क्लियर दो दिखता है, हाँ, स्पष्ट दिखाई देता है कि चंद्र दो है, हाँ, वास्तव में एक ही है। तो भ्रांतिगत रूप से उतना स्पष्ट दिखे कि कुछ करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे कभी ठंड की सीजन हुई, हमको गर्म पानी चाहिए स्नान करने में, पानी को गर्म करेंगे तो पानी मिलेगा गर्म, नल में तो ठंडा आता है, और गर्म पानी से नहाना हो तो कोई ना कोई व्यवस्था बिठानी पड़ेगी, या तो हम स्टोव पे, गैस पे करें, या गीजर में करें, या कहीं ना कहीं, बिना किए हुआ क्या? तो कुछ एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कुछ एक घटनाएं ऐसी होती है संसार में जो कर्तृत्व को दृढ़ करती है, भ्रांति को और दृढ़ करती है। इसलिए ये स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, वो ज्ञान में आता नहीं है। अनादि से संकल्प विकल्प पूर्वक ये सब में एकत्व बुद्धि हो रही है, तो यथार्थ बात कहां से बैठे? इतना संकल्प विकल्प करके जो भी व्यवहारिक जीवन चलता है उसमें उतना एकत्व है कि मैं ये कर सकता हूं। एकत्व मैंने क्या, कर्ता कर्म अभेदपना में ही होता है, तो अभेद बुद्धि है उसमें, शरीर में अभेद बुद्धि है, दूसरे संयोगिक पदार्थ में भी अभेद बुद्धि है, तो यथार्थ बात बैठती ही नहीं है। कहां से बैठेगी? नहीं बैठेगी। एक मनुष्य को एक दिन में कितनी इच्छाएं होती है? और कितनी सफल होती है? कुछ एक सफल होती है। परसेंटेज गिने तो 5% आएगा सफलता का, निष्फलता का 95% आएगा। फिर भी ये वस्तु का स्वरूप क्या है उस पर किसका ध्यान नहीं जाता, किसी का ध्यान नहीं जाता संसार में। और जो पद्धति है वही पद्धति से सब काम चलाते हैं, काम भी करते हैं और दुखी भी होते हैं। अब यथार्थ समझ करके बिठाना, हमारे पूर्वजों जो तीर्थंकर आदि हुए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके ये घोषणा की दिव्य ध्वनि में, देखिए जगत के सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं, कोई परतंत्र नहीं है। हम समझते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं वो तो हमारे अधीन होते हैं कि नहीं होते, होते हैं क्या? हाँ नहीं होते। उसको जो खिलौना चाहिए और आप दूसरा दे दो वो फेंकेगा। आप कहेंगे कि अच्छा है, ये प्लास्टिक का है, ये चांदी का है, तुम इसे खेलो, नहीं हमको वो चाहिए। उसकी चाहत है, इच्छा है, गमा है, अणगमा है, वो स्वतंत्र है। आपकी इच्छा के अनुसार उसका परिणमन होवे वो संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। अपनी इच्छा के अधीन कोई परिणाम है ऐसी कोई वस्तु व्यवस्था तो नहीं है। फिर भी हम हमारे इच्छा के अनुकूल परिणमन हो कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं तो हमें आकुलता होती है, दुख होता है, क्योंकि होता नहीं है। कुछ एक होता है तो राजी हो जाते हैं, तो अपने करने कराने की मान्यता और भ्रांति दृढ़ हो जाती है। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है ऐसा समझे तो हम दूसरे पदार्थ के परिणमन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हस्तक्षेप नहीं करने से हमको भी शांति और उसको भी शांति। जब कोई हमारे काम में दखलबाजी करते हैं तो हमको अच्छा लगता है क्या? एक ऑफिस में दो बुद्धिमान का टेबल एक चैम्बर में साथ में नहीं रह सकता, रह सकता है क्या? क्यों? कि बुद्धि वाला तो डेढ़ापन करेगा कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, और उनको ये उसका ईगो हर्ट होता है कि हमको ये दखलबाजी क्यों करता है, क्या हमारे में अकल नहीं है, क्या हम नहीं समझते क्या? एक चैम्बर में इसलिए अलग अलग चैम्बर में बैठते हैं, एक चैम्बर में नहीं बैठ सकते, एक टेबल पे नहीं काम कर सकते लोग। दखलबाजी किसी को पसंद नहीं, मतलब तो अपना वो है कि दखलबाजी किसी को पसंद नहीं है, और दखलबाजी करने से अशांति होती है। क्या होता है? अशांति होती है। आप किचन में जाओगे मदद कराओ वहां तक तो ठीक है, लेकिन दखलबाजी करोगे तो बाहर निकलो, आप अपना काम करिए, ऑफिस में चले जाइए, कोई पसंद नहीं करेगा। और वस्तु व्यवस्था भी ऐसी है कि किसी के काम में दखल मत करके शांति से अपनी शांति का भोग करिए, शांति का वेदन करिए। ये सब पुद्गल का परिणमन है। मैं चैतन्य हूं, मैं तो जीव हूं, चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। शरीर आदि सब पुद्गल के परिणाम है। इस शरीर का और बाहर का जो भी परिणमन है वो पुद्गल का है। जो भी पांच इंद्रियों द्वारा ज्ञान गोचर होता है ये सब पुद्गल का परिणाम है, क्योंकि आत्मा तो इंद्रिय ज्ञान से गोचर नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता। हवा भी पुद्गल है भले दिखाई नहीं देती, गंध भी पुद्गल है भले दिखाई नहीं देती, और स्वाद भी पुद्गल है भले दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरे दूसरे इंद्रिय ज्ञान से वो मालूम पड़ता है। सब पुद्गल के परिणाम है और आत्मा चैतन्य है। दोनों में अपनी अपनी शक्ति से परिणमन होता है स्वतंत्र रूप से। कोई किसी का कार्य करे ऐसा कोई अवकाश नहीं है। अपने अनंत शक्ति से जीव भी परिणमन करता है, पुद्गल भी परिणमन करता है। उस परिणमन के चक्कर में कोई माथा लगाए तो वो माथा फट जाएगा, हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी शक्ति से वो परिणमन हो रहा है। वहां दूसरा का हस्तक्षेप कोई करे तो करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, अवकाश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई किसी का काम में दखल करे तो कर सके। जैसे रोग आता है वह भी पुद्गल का परिणाम है, नहीं चाहते हुए भी आता है। रोग आता है वह भी पुद्गल का परिणमन है, वह आत्मा का परिणमन नहीं है। शरीर का रोग शरीर का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है, आत्मा का परिणमन नहीं है। जीव भ्रांति से ऐसा समझता है कि रोग मुझे हुआ है। किसको हुआ? मुझे हुआ है। एकत्व है शरीर में, अपनत्व है और एकत्व है, तो समझता है कि रोग मुझे हुआ है। इसलिए रोग का जो सेंसेशन है वो भी मुझे होती है ऐसा लेता है। वो तो परमाणु की प्रक्रिया है। क्या है? जो शरीर की सेंसेशन है वो परमाणु की प्रक्रिया है। ऐसे फोड़ा हुआ, वहां सेप्टिक हुआ, कुछ न कुछ ब्लड में से सेप्टिक होने की प्रक्रिया हो रही है। ये लोही की खून की विकृति है। लोही में से खून में से सेप्टिक होना ये अननेचुरल है, अगेंस्ट नेचर है। तो इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ सेंसेशन होती है। भ्रांति से जीव को ऐसा लगता है कि ये पीड़ा मुझे हो रही है। वास्तव में आत्मा ज्ञान है, ज्ञान को पीड़ा नहीं होती। जैसे टेम्परेचर शरीर की गर्मी है, ज्ञान की गर्मी नहीं है। ज्ञान को टेम्परेचर नहीं आता, आता है ज्ञान गर्म होता है क्या? ये तो चैतन्य दर्पण है। दर्पण में जैसे अग्नि दिखाई देती है, अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है, चैतन्य दर्पण गर्म नहीं होता। वैसे पीड़ा जिसको बोलने में आती है वो एक चैतन्य दर्पण में शरीर की प्रक्रिया का, परमाणु की प्रक्रिया का प्रतिबिंब होता है। वैसे ही भीतर में कर्म का उदय आता है। क्या आता है? भीतर में कर्म का उदय आता है। जैसे क्रोध प्रकृति का उदय आया, तो जिसको जिस ज्ञान में ये क्रोध प्रकृति का प्रतिबिंब पड़ता है, भिन्नता नहीं जानने के कारण से क्रोध मेरे में हुआ, मुझे हुआ, ऐसे क्रोधान्वित हो जाता है। स्वाद में मुझे कड़वा लगा, मीठा लगा, तीखा लगा, होता नहीं। ज्ञान में कुछ आता नहीं, जानने का होता है, प्रतिबिंब होता है। भिन्नत्व ज्ञान में नहीं रहने से मेरे में हुआ, मुझे हुआ, ऐसा भ्रांतिगत मिथ्या अनुभव होता है। क्या होता है? भ्रांतिगत मिथ्या अनुभव होता है, जबकि ज्ञानियों को ऐसा अनुभव नहीं होता। और मुनियों तो इसके सबूत है कि उसको कुछ होता ही नहीं, वो अविचलित रहते हैं ठंडी में गर्मी में, जैसे कुछ होता ही नहीं। तो ये पुद्गल का परिणमन है, आत्मा का परिणमन है ही नहीं। रोग आता है वो भी पुद्गल का परिणमन है, आत्मा का परिणमन है ही नहीं। शरीर रोगी होगा, रोग बढ़ेगा भी, और वहां तक बढ़ेगा कि शरीर और आत्मा भिन्न हो जाएगा। बहुत रोगिष्ट होने से प्राण छूट जाएगा, शरीर का और प्राण का वियोग हो जाएगा, आत्मा को क्या होगा उस वक्त? चलो, बहुत रोगिष्ट हुआ, बहुत रोगिष्ट, अति रोगिष्ट हुआ, सभी कॉम्प्लिकेशन हो गए, हार्ट बिगड़ गया, किडनी बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, आत्मा वहां से चला गया, क्या हुआ? ये रोग लेके गया क्या? शरीर इधर रह गया, आत्मा निर्लेप स्वरूप ही है, उसको कुछ लगा है ही नहीं, वो और जगह चला गया, उसका साथ में रहने का समय पूरा हो गया। जहां तक पूरा नहीं होता है वहां तक वो साथ में रहता है, तो भी उसको कुछ रोग लगता नहीं। अति रोग बढ़ने से भी आत्मा को तो रोग लगता नहीं, और वो अलग होता है तो भी ऐसे ही शुद्ध है, और साथ में रहा तो भी बिना रोग शुद्ध ही शुद्ध है। ऐसा अनुभव सुख का कारण है, ऐसी श्रद्धा सुख का कारण है, वरना दुखी हो जाएंगे। मुझे हुआ, मेरे में हुआ, मुझे हुआ, दुखी हो जाएंगे। वह आत्मा का परिणमन नहीं, ऐसे यथार्थ श्रद्धा करके बात को बिठाना, श्रद्धा करके समझ करके उसमें स्थिरता लाना, बिठाना मैंने स्थिरता लाना, मक्कम रहना। कल सुबह के स्वाध्याय में बात चली थी, शाम को चली थी, कल शायद परसों शाम, हाँ, भावना के साथ मक्कमता होती ही है। तो जो भावना के साथ समझता है उसको श्रद्धा होती है, और ज्ञान और श्रद्धा का बल आए बिना रहता नहीं। वो ज्ञान दशा में श्रद्धा ज्ञान का बल है, मुमुक्षु दशा में भावना का बल होता है, और वो भी कम नहीं है, भावना का बल भी कम नहीं है। सही वस्तु स्वरूप समझ करके जिसको सही भावना हुई, उनको कोई परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति डिगा नहीं सकती। चाहे कोई शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, वो तैयार है। हमारे भावना से डिगने वाले नहीं है, यानी हमारी भावना बदलने वाली नहीं है। हमारे वो प्रश्न आया था जो सूर्यकृति भगवान को विराजमान करने की बात थी, तो बहन श्री के ज्ञान में वो बात आ गई। आप थे कि नहीं थे मीटिंग में? थे। ऐसी मीटिंग प्राइवेट होती थी, दो चार आदमी के बीच में ही होती थी। तो उस वक्त हम डिसीशन सब लेते थे सोनगढ़ के, तो हमने बोला कि ये तो करना चाहिए, समूह की भावना का विषय है। घोषणा तो आगे हो चुकी थी ये करना है, और लोग उत्साह में भी थे। जब घोषणा हुई कि सूर्यकृति भगवान की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तब वो दादर का वो जन्म जयंती का प्रसंग चल रहा था। प्राण भाई दादर ट्रस्ट की ओर से आभार विधि कर रहे थे, हमसे इजाजत ले ली कि हम क्या घोषणा कर दे सूर्यगति भगवान का, बोल दो बोल दो। बिना किसी से डिस्कस किए हुए हमने हाँ भर दी, उन्होंने घोषणा कर दी। तो एक आदमी ने बोला कि प्रतिमा जी लाने का 51,000 मेरी ओर से। फिर बाद में अब बात चली कि बेंचरी से भी बात नहीं किया, इसके पहले ये बात डिसाइड होकर के अनाउंसमेंट हो गया समाज के बीच में। तो फिर दोपहर को जब चर्चा का टाइम हुआ, सब गए, या जैसा सुबह सुबह हुआ था, जैसा भगवान को विराजमान करने का सबका बहुत उत्साह है, भाव है, लेकिन आपको तो आपकी तो आज्ञा भी नहीं ली, तो आपकी आज्ञा लेने को हम लोग आए हैं, ऐसा करके दादर वाले बोले। वो बताया गया कि भाई ये अपने को ओवरटेक करके अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन बात तो पहले मंजूर करा लेनी चाहिए थी। तो मैंने ने भी अपनी भावना व्यक्त कर दी कि बहुत अच्छी बात है। तो अनुभव दूसरा विमुक्ष बैठे थे वो जगदीश भाई, तो बोले कि 111,000 प्रतिमा जी लाने का मेरी ओर से, स्थापना करने का नहीं, वो बोली तो खाली प्रतिमा जी लाने का ही था। तो सबको उत्साह देखा सबका, पैसे का भी भावना थी, उन्होंने हाँ भर दी। फिर बात उनके तो ज्ञान में आ गई बात, तो बहुत विरोध होगा, और उनके ज्ञान में वहां तक बात आई थी कि जयपुर वाले विरोध उठाएंगे कराएंगे और बहुत बड़ा विरोध दिगंबर संप्रदाय में हो जाएगा। हाँ बराबर बताया उन्होंने, कितना बताया डिटेल से बताया, और ऐसा ही हुआ पीछे से। हाँ जैसा बोला था वैसा ही हुआ, उन लोगों ने पेपरबाजी शुरू कर दी और बहुत विरोध सारे हिंदुस्तान में जगाया। तो हमको पूछा कि देखो ये छोटी मोटी बात नहीं है, गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है, सारे हिंदुस्तान के इस समाज का विरोध आएगा, आपकी भावना होवे और हिम्मत होवे तो निश्चय करना निर्णय करना, और मेरे को बीच में मत लाना, आपके स्वयं की हिम्मत होवे मेरे को बीच में लाए बिना, क्लियर कर दिया तो डिसीशन लेना वरना मत लेना। हमने कुछ सेकंडों में बात सोच ली, हम बोले कि किसी हालत में हमारी भावना में फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको ऐसा दिखता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी भावना में भी और हिम्मत में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम आपकी उपस्थिति में ये निश्चय करते हैं कि ये प्रतिष्ठा हमको करनी है। बाकी तो गड़बड़ी तो बहुत हुई, विरोध भी बहुत हुआ, सब कुछ बहुत हुआ, लेकिन यथार्थ भावना के साथ मक्कमता जुड़ी हुई है, एक सिक्का के दो बाजू साथ में रहती है। भावना रहे और मक्कमता नहीं हुए ऐसा बन सकता नहीं है। ये तो बाह्य प्रसंग की बात है। बाकी दुनिया विरुद्ध मत, समाज क्या, सारा जगत विरुद्ध में आ जाए तो भी हमारी भावना में क्या फर्क पड़ता है। उन लोगों के विरोध से हमारा परिणमन बदल जाए, ये कहाँ की बात है। ये तो बाहर का कार्य है, अंदर में तो इससे बलवान भावना होती है। स्वरूप, स्वरूप प्राप्ति की भावना, आत्मकल्याण की भावना, स्वरूप की भावना तो इससे भी बलवान होती है। और इसमें तो किसी की दखलबाजी हो ही नहीं सकती, और वो तो स्वाधीन परिणमन है एकदम। पार में तो संयोग का कितनी पराधीनता होती है, ये तो अंतर में तो एकदम स्वाधीनता है। इसलिए आत्मकल्याण का कार्य सुगम है और सरल है, बाहर का कार्य उतना सुगम और सरल नहीं होता। क्या कहते हैं इधर कि यथार्थ श्रद्धा करके बात को बिठाना, बिठाना मैंने मक्कमता आनी चाहिए, और सभी उदय प्रसंग में इस बात को लागू कर देना चाहिए। जैसे हमारे परिवार में हमारी इच्छा के अनुसार अगला नहीं मानता, नहीं करता, क्यों नहीं ऐसा होता है वो बात हमको नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ ये बात हमको नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र परिणमन कर रहा है, इसका परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है। अपने को दखलबाजी नहीं करके हट जाना है। क्या करना है, हट जाना है। तुम तुम्हारी जानो, तुम तुम्हारा परिणमन तुम्हारी योग्यता के अनुसार जो हुए सो हुए, हमको कोई अशांति करनी है ही नहीं। क्रोध प्रकृति तो आइस हो जावे, एकदम ठंडी, क्या एकदम ठंडा बना जाएगा। अनादि का अभ्यास है उल्टा, अनादि का उल्टा अभ्यास है, और एकत्व बुद्धि ऐसी जोरदार हो रही है। बात तो ऐसा है कि जीव में शक्ति बहुत है ना, सामर्थ्य बहुत है, अनंत 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 एक एक शक्ति का अनंत सामर्थ्य, और ऐसी इतनी अनंत शक्ति के जिसकी कोई हद नहीं है गिनती में, इतनी अनंत शक्ति। इसलिए इसमें शक्ति का सामर्थ्य का ऐश्वर्य बहुत है। क्या है, ऐश्वर्य है इसका, स्वतंत्र रूप से परिणमन करना। क्या अपनी शक्ति का परिणमन स्वतंत्र रूप से जीव करता है, अनंत शक्ति का, और उतना सामर्थ्य है, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन वो उल्टा होता है तो अधिकार जमाता है दूसरे पे। वो ईश्वरी क्या करता है, उल्टा पड़ता है तो अधिकार जमाता है दूसरे पदार्थों पे, सचेत और अचेत दोनों, कि मैं इसका धनी हूं, मैं अधिकारी हूं, और मैं चाहूं वैसा होना चाहिए। सत्ता, सत्ता ईश्वरी क्या करता है, ईश्वरता क्या करती है, सत्ता जमाती है।
और उसमें भी जो घर में मुखिया है वो तो मर गया बेचारा क्योंकि उसको तो ये कैफ चढ़ेगा सत्ता का, मैं मुख्य हूं और मेरी चलने चाहिए, उसको तो वो तो दुखी 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 बहुत दुखी होगा। सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? घर का मुखिया। अब तुमको मुखिया होना है तो अपना ऐश्वर्य को संभालो ना, ये नहीं है कि हम मुखिया नहीं बनाना चाहते हैं, मुखिया रहो लेकिन अपने में उसकी हद होनी चाहिए, अपनी इसकी सीमा होनी चाहिए अपने तक। दूसरे पे अधिकार जमाना यही अशांति का मूल है। किसका मूल है? वो अशांति का मूल है, दुख का मूल है। और दूसरे पदार्थ भी अपने अपने में ऐश्वर्य ईश्वर है, जड़ जड़ेश्वर है, आत्मा चैतन्य ईश्वर है। तुम अधिकार जमाना जाओगे तो भी होने वाला तो है ही नहीं, तो टक्कर लेनी पड़ेगी, टकराओगे तो दो ईश्वर टकराएंगे, क्या होगा? दोनों ईश्वर टकराएंगे, दोनों में अनंत शक्ति है। जिसको ये मान्यता है, ये विश्वास है कि मेरी इच्छा अनुसार मेरे परिणाम अनुसार होना चाहिए, वो दुखी हो जाएगा। उसका अगले का ईश्वरीय टूटेगा नहीं, उसमें अनंत शक्ति है, वो ईश्वरीय टूटने वाला है ही नहीं। और तुम अपनी ईश्वरता की सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ते हो तो तुमको मार पड़ेगा, तो दूसरे के घर में घुसो क्या होगा? पड़ोसी के घर में घुसो ना, किसी के घर में भी घुसो क्या होगा? दंडा पड़ेगा। क्यों? उसके सब अपने अपने मालिक है। इसलिए स्वतंत्रता स्वीकारते ही ये सब गड़बड़ी बंद हो जाती है। मैं किसी का कुछ नहीं, मैं किसी का कुछ है ही नहीं, और जो संबंध है व्यवहारिक संबंध है वो हमको परमार्थ कार्य में बीच में लाना नहीं है। पारमार्थिक हमारा जो मार्ग है उसमें बीच में लाना नहीं है, वो बीच में लाने से और गड़बड़ी हो जाएगी। पारमार्थिक कार्य क्या है कि इसकी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता स्वीकार करके हम अपने में अपनी सीमा में रह जाए। और व्यवहारिक संबंध है मानो के बाप बेटे का, बाप ये चाहता है कि बेटा मेरे अंडर में रहना चाहिए, पारमार्थिक वस्तु स्थिति ऐसी है ही नहीं। तो पारमार्थिक कार्य करना हो तो वो व्यवहार को बीच में मत लाना है। तो ये भी जीव है, स्वतंत्र है। लोग भले ही कहते हैं मेरा बेटा है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी एक स्वतंत्र जीव है। मेरा अधिकार चलाना ये मेरी गलती होगी, अधिकार चलाना वही मेरी गलती होगी। और हमें दुखी होना नहीं, दुखी होना है तो अलग बात है। उदय आएगा सभी प्रकार का, अनेक प्रकार का, चित्र विचित्र, जो भी उदय आए हमको इस उदय को पारमार्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करके इसका सॉल्यूशन निकालना है, या व्यवहारिक दृष्टि से उसकी गिनती करके सॉल्यूशन निकालना है। सारे जगत व्यवहारिक दृष्टि से सॉल्यूशन निकालना चाहता है, सब दुखी होते हैं। सुखी होना है तो वो बात छोड़ देनी पड़ेगी, मेरा अधिकार कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं सारे परिवार के लिए इतना परिश्रम करूं पैसा कमा कमा करके ला करके सबकी इच्छा की पूर्ति करो और मेरा अधिकार नहीं चले, वो बात कैसे चलेगी, वो बात कैसे बैठेगी? हाँ, हम सब कुछ करते हैं तो आप हमारे अधीन तो रहो। हाँ, विनय विवेक ठीक है, व्यवहार विनय विवेक पूर्वक रहे वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है। बात रही अधीन होने की, तो ऐसी अपेक्षा तो रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? हाँ, कि भाई आपने जो कुछ किया अपने राग के लिए किया है, किसके लिए किया है? हाँ? राग के कारण से किया के दूसरे कारण से किया है? हाँ? राग का पोषण अपना किया, और हम आरोप लगाते हैं कि हमने आपके ऊपर उपकार किया है, आपको वो दिया वो दिया, ये किया वो किया, अब हमारा अधिकार होना चाहिए। हमको पारमार्थिक दृष्टि से सॉल्यूशन निकालना है या व्यवहार दृष्टि से सॉल्यूशन निकालना है, पहले ये निश्चय करो, क्योंकि उदय ही बंध का कारण होता है। बंध का कारण कौन होता है? उदय ही बंध का कारण होता है। पूर्व कर्म का उदय तो वो बंध, पूर्व का बंध छुड़ने के छुटने के लिए आया, और जीव नया अधिक बंध कर लेता है। कितना करता है? प्राय अधिक करता है संसार में। जो यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझता है वही बंध से छूटने का प्रयास में लगता है। करे उदय आया, हमको सावधान हो जाना है, हम स्वतंत्र वो स्वतंत्र। एकत्व बुद्धि इतनी जोरदार हो रही है, अनादि का अभ्यास है, इसलिए बात नहीं बैठती। बारंबार अभ्यास करे, इसलिए बार बार अभ्यास, उल्टा अभ्यास करे, उल्टा प्रयोग करे, यानी वस्तु के स्वरूप अनुसार उल्टा प्रयोग करें, तभी यथार्थ बात बैठती है, और तभी ये बात यथार्थ रूप से बैठने वाली है। और बात बैठेगी तो शांति हो जाएगी, नहीं बैठेगी तो अशांति होगी ही होगी।
चलना फिरना खाना पीना जितना भी हो रहा है सब पूर्व कर्म का उदय है।
और क्या, पहले तो ये देख लो कि हम कुछ न कुछ परिवार में कुछ न कुछ स्थान पे हैं। आप मुख्य हैं, अलग बात है, कोई मुख्य होते हैं कोई मुख्य नहीं होते हैं। हाँ, जिसको बड़े लोग होते हैं तो मुख्य नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो बड़े छोटे होते हैं, छोटे भी मुख्य हो जाते हैं, उदय का तो कोई ठिकाना नहीं है। अब जो भी हमारा जो भी स्थान है परिवार में, हम अधिकार कितना जमाते हैं चेक करना। लड़कों से, बच्चों से, पति पत्नी से कितना अधिकार रखते हैं, ये अधिकार वाली बात दुखदायक होगी। अब पसंद करना है दुखी होना है या सुखी होना है, सब स्वतंत्र है, अधिकार छोड़ दो। व्यवस्था साथ में बैठ करके डिसाइड कर लो कि कैसे चलाना है, खान पीन खर्च वगैरह की व्यवस्था को, सब बुद्धिमान है आजकल तो, पढ़े लिखे होते हैं, समझ जाएंगे भी अपना इतना बजट है, ऐसे हमको चलना है। कोई अधिकार मन जमाने की बात तो क्लेश को उत्पन्न करने वाली रहेगी। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि संसार में भी सुखी होना है तो ये समझदारी काम में आएगी। और आत्मा में भी सुख शांति चाहिए तो ये समझदारी काम में आएगी। ये मार्ग सर्वांग सुंदर है, 83 नंबर के पत्र में लिखा है, जीवन और मरण दोनों के बीच में जो समय है, ऐसा करके लिखा है। अगर उसके में, उसमें भी मैंने आयु के भोगने के काल में भी सुखी रहना हो तो यही व्यवस्थित समझ से, व्यवस्थित क्रम से चलो तो सुख शांति रहेगी, वरना हम कहीं न कहीं अधिकार जमाएंगे। अगला भी ईश्वर है, वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है कोई, परमाणु भी बर्दाश्त नहीं करेगा आपके अधिकारी बना, और दूसरा जीव भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और टक्कर लेनी पड़ेगी, और उसमें तो माथा में घाव लगने वाला है ही, व्याकुलता का दुख का कारण हो जाएगा। यहां तक रखें, पासठ में ले लिए।